हरे कृष्णा। महाभारत की कक्षाओं में अभी तक चर्चा हम लोग ये कर चुके हैं कि किस प्रकार धोखे से पांडवों को हराया गया द्यूत क्रीड़ा में, जुए में, और फिर इतना ही नहीं कैसे उनकी पत्नी को, द्रौपदी को, एक स्त्री को सभी के समक्ष, सारी सभा में, सारे वरिष्ठों के सामने, सारे लोगों के सामने, उसके पतियों के सामने, सभी के सामने उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, और कैसे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। द्रौपदी का ये उदाहरण हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में हमारी रक्षा कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर कोई रक्षा कर सकता है तो केवल भगवान है। ये बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम सबको अपने अपनी शक्ति पर अहंकार होता है, अपने धन पर अहंकार होता है, अपनी मान प्रतिष्ठा पद पर अहंकार होता है। व्यक्ति सोचता है मैं अपने बल से, अपने धन से, अपने पद से अपनी रक्षा कर सकता हूं। लेकिन देखिए भगवान ने कितना सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। वो व्यक्ति जो सारे जगत में सबसे बलवान थे, पांडव, अर्जुन, भीम, कोई कमी नहीं थी बल की, धन की कमी नहीं थी, अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं थी, प्रसिद्धि की कमी नहीं थी। उनसे प्रसिद्ध और कौन था इस जगत में उस समय? अभी अभी राजसूय यज्ञ किया था, सारी पृथ्वी में उनको राजा माना गया था। तो ना तो उनसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति इस पृथ्वी पर था, ना ही उनसे शक्तिशाली व्यक्ति। तो ये सब होते हुए भी भगवान ने क्यों ये लीला की? ये समझाने के लिए कि इस जगत में ये चीजें हमारी रक्षा नहीं करती। न बल रक्षा करता है, न धन रक्षा करता है, न पद, न प्रसिद्धि। और यही चीजें हैं जिनके पीछे लोग भागते हैं, या तो धन कमाने के लिए भागते हैं, या प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, या फिर कोई पद पाने के लिए भागते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। हर व्यक्ति धन केवल इसलिए कमाता है क्योंकि वो सोचता है कि धन में मेरी सुरक्षा है। अगर धन होगा तो मैं सुरक्षित हूं, मेरा भविष्य सुरक्षित है, यही तो सोचते हैं ना। नहीं तो और किस लिए धन कमाते हैं व्यक्ति? ज्यादा से ज्यादा धन, हाँ आवश्यकता के लिए जितना है उतना कमाए ठीक है, लेकिन हमेशा ज्यादा कमाना चाहते हैं। क्यों? भविष्य की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, या फिर कोई पद पाना चाहते। तो भगवान ने केवल एक छोटी सी लीला करके दिखला दिया कि जिनके पास सारा धन था, सारी सुरक्षा के साधन थे, वे लोग अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। एक साधारण सी चीज। तो भगवान ने दिखलाया कि रक्षा भगवान कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें धन नहीं कमाना, हमें परिवार की सुरक्षा की चिंता नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। नहीं, अपना कर्तव्य करना है, लेकिन श्रद्धा विश्वास कृष्ण में होनी। हम अपना कर्तव्य करें, धन कमाना है, ये सोचकर नहीं कि मैं इस धन से अपनी रक्षा कर सकता हूं, ये सोच के कि भगवान ने कर्तव्य दिया है मुझे जितना धन कमाना है और फिर बाकी समय भगवान की सेवा में लगाना, वो धन भी भगवान की सेवा के लिए। तो इसीलिए इस बहुत सुंदर प्रसंग से, द्रौपदी के वस्त्र हरण के प्रसंग से हम लोग सीखते हैं कि पहली चीज कि कोई और नाथ नहीं है। कृष्णा त्वदाक्रोशद अनन्य नाथा, कोई और नाथ नहीं, केवल एक कृष्ण है जो हमारी रक्षा कर सके, सच्चे नाथ। और जिनके पास कृष्ण नहीं है, जिन्होंने कृष्ण की शरण नहीं ली, सच्ची दृष्टि में वे अनाथ हैं। इस जगत में अनाथ शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके माता पिता नहीं, तो कहा जाता है ये अनाथ है। लेकिन सही दृष्टि में अनाथ वो व्यक्ति है जिसने कृष्ण को अपना माता पिता स्वीकार नहीं किया, शरण नहीं आए, क्योंकि एक ही नाथ है जगन्नाथ जो सबके नाथ है। तो द्रौपदी की लीला से ये हम सीखते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो जिनकी शरण जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस लीला से हम लोग सीखते हैं कि किस भाव में शरण ग्रहण करनी चाहिए। पहला है शरण कृष्ण की ही जाना चाहिए। जितने शक्तिशाली लोग हों इस जगत में, धनवान लोग हों, प्रसिद्ध लोग हों, पदाधिकारी हों, कोई रक्षा नहीं कर सकता, शरण कृष्ण की जाना है। दूसरा, किस भाव में जाना है ये द्रौपदी सिखलाती है, पूर्ण समर्पण, अपने ऊपर विश्वास नहीं, निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया। हमें जब तक अपने ऊपर विश्वास रहेगा हम कृष्ण को समर्पण नहीं कर सकते। अंग्रेजी में या हिंदी में भी एक शब्द है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर एक ही विश्वास होना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊं, मैं कृष्ण का दास हूं, ये विश्वास होना चाहिए बस। ये विश्वास नहीं कि अपने बल पर मैं धन कमा लूंगा, अपने बल पर प्रसिद्धि आएगी, अपने बल पर मैं परिवार की रक्षा करूंगा, अपने बल पर मैं सब कुछ इस जगत में पा लूंगा। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं एक भजन में कि मुझे बहुत भरोसा था अपने बल पर, निज बल चेष्टा, अपने बल से जो कार्य कर रहा हूं, लेकिन अब भरोसा छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जान गया हो नहीं सकता, इसीलिए आपके चरणों के प्रति आश्रय लिया। तो द्रौपदी की लीला से यह भी हम सीखते हैं कि हमें किस भाव में, इस भाव में कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, कोई कला, कोई गुण नहीं है, जो है कृष्ण से आता। अगर मेरे अंदर कुछ बोलने की कला है, मेरे अंदर गाने की कला है, मेरे अंदर कुछ कार्य करने की कला है, कोई व्यवस्थापन की कला है, कोई धन कमाने की कला है, कृष्ण का गुण। कृष्ण अपने गुणों को लोगों में एक अंश मात्र प्रकट करते हैं, वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे कृष्ण किसी को बहुत सुंदर बना देते हैं, इस जगत की सुंदरता कृष्ण की सुंदरता के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण एक अंश मात्र किसी में देते हैं, वो व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है, सौंदर्य, धन, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य, ये कृष्ण के ऐश्वर्य है, ये हमारे ऐश्वर्य नहीं है। लेकिन केवल कृष्ण एक अंश मात्र दे देते हैं जीव को, बहुत थोड़ा सा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कृष्ण के पास करोड़ों 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 रुपया है, उसमें से एक पैसा, करोड़ों 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 रुपए से एक पैसा किसी को मिल जाता है, इस जगत का सबसे अमीर आदमी कहलाता है और वो प्रसिद्ध हो जाता है। तो कृष्ण अपने ऐश्वर्यों को अलग अलग लोगों में प्रकट कराते हैं, ये दिखलाने के लिए कि अगर एक अंश मात्र किसी जीव में मैं देता हूं, वो जीव इतना आकर्षित हो जाता है, तो आप सोचो कि जो पूर्ण है, परिपूर्ण है इन ऐश्वर्यों से, वो कितने आकर्षक होंगे। इसीलिए इस जगत में अगर हम किसी बड़े धनवान व्यक्ति को देखें तो हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि एक दिन मैं भी धनवान बनूंगा, इसको धन सारा मंदिर को दे देना चाहिए, नहीं, हमें मन में आना चाहिए कि अगर ये व्यक्ति भगवान के अंश प्राप्त करके धनवान होके इतना आकर्षित हो गया कि सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, तो विचार करना चाहिए कृष्ण कितने आकर्षक होंगे। अगर हम किसी सुंदर चीज को देखते, कोई सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, स्वाभाविक है सुंदरता के प्रति आकर्षण होता है, अच्छा लगता है, मन में क्या विचार करना है तुरंत कि अगर इस जगत का ये एक साधारण सा व्यक्ति, इसमें इतने जो भगवान ने एक अंश प्रकट किया, अगर इसमें इतनी सुंदरता है कि मेरा मन उस ओर आकर्षित हो रहा है, तो फिर कृष्ण कितने सुंदर होंगे, कृष्ण की क्या सुंदरता होगी। जिसने इस जगत को सुंदर बनाया वो कितना सुंदर होगा, जिसने उस व्यक्ति को, सुंदर व्यक्ति को वो सुंदरता प्रदान की, जिसके अंदर शक्ति है वो सुंदरता प्रदान करने की, वो सुंदरता जिस व्यक्ति का अंश मात्र है, वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा। यह ज्ञान, वैराग्य, यश, बल, ये चीजें जब हम लोगों में देखें जो आकर्षित करने लायक हैं, तो एक ही विचार मन में आना चाहिए, इनके स्रोत कृष्ण कितने सुंदर होंगे। ये माया से बचने का बहुत सरल उपाय है। जो लोग धन की ओर बहुत आकर्षित होकर भक्ति को भूल जाते हैं, जो लोग सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर भक्ति को भूलते हैं, जो कि कोई बल या यश या वैराग्य या ज्ञान की ओर आकर्षित होकर भक्ति को भूलते हैं, उनके लिए ये एक मार्ग है कि यहां जब हम सौंदर्य देखें, कृष्ण का सौंदर्य कितना होगा, धन देखें कृष्ण कितने धनवान, बल देखें कृष्ण कितने बलवान। बड़ा सरल है, माया से रक्षा हो जाएगी, क्योंकि जहां कृष्ण तहां न ही माया रह अधिकार। जब हम मन में कृष्ण को लाते हैं तो फिर माया के लिए स्थान नहीं है। ये बड़ा सरल उपाय हम सबके लिए है। तो ये हम लोग द्रौपदी की लीला से सीखते हैं कि कैसे हमें भाव, किस भाव में हमें समर्पण करना चाहिए। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, हमेशा कृष्ण रक्षा करेंगे। द्रौपदी को अंत तक, आप सोचिए कितना, जब द्रौपदी को खींच के लाया, रक्षा नहीं की, सबके सामने प्रार्थना कर रही है रक्षा नहीं की, साड़ी को खींचने का प्रयास कर रहा है रक्षा नहीं की, लेकिन अंत में की, ये दिखलाने के लिए कि हमें विश्वास होना चाहिए। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं, अभी कष्ट हैं, लेकिन कृष्ण रक्षा करेंगे। विश्वास पालन, ये समर्पण की विधि है। समर्पण उसे कहा जाता है जब व्यक्ति को यह पूरा विश्वास हो जाता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, कृष्ण ही मेरे पालक हैं। तुम्ही तो रक्षक यार पालक आमार, आप ही रक्षक हैं, आप ही पालक हैं। ये विश्वास, ये समर्पण का लक्षण है। जो अनुकूल हो भक्ति के लिए उसको करना, जो प्रतिकूल हो उसको त्याग देना, भगवान को समर्पण करना, भगवान के, भगवान को अपना रक्षक, अपना पालक मानना, दीन भाव में रहना, ये समर्पण के लक्षण है। तो इस प्रकार द्रौपदी का समर्पण हुआ। और फिर हमने सुना पिछली बार कि द्रौपदी का जब ये प्रसंग हो रहा था तो विदुर ने समझाया धृतराष्ट्र को, भीम ने घोषणा की कि अभी सबका वध कर दूंगा, सहन नहीं हुआ भीम से, और फिर उस समय धृतराष्ट्र ने सारा राज्य वापस कर दिया। ठीक है युधिष्ठिर ले जाओ। और उस समय केवल राज्य वापस नहीं किया, ऐसा नहीं कि केवल बस राज्य वापस दिए, बहुत सुंदर उपदेश भी दिए। देखिए एक दृष्टि में हम देखते हैं धृतराष्ट्र उपदेश सुनाने के लायक व्यक्ति नहीं है। धृतराष्ट्र से हम उपदेश स्वीकार नहीं कर सकते हैं ना, जो खुद आसक्त व्यक्ति है, अधर्मी व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई उपदेश देता है तो क्या उसको ग्रहण करना चाहिए? चाणक्य पंडित कहते हैं कर लेना चाहिए, क्योंकि उपदेश सोने के समान है। वो कहते हैं कि अगर सोना कीचड़ में पड़ा है तो उसका मूल्य खत्म नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि सोना, अगर कोई सोने का टुकड़ा कीचड़ में पड़ा है, समझ लीजिए आधा किलो सोना कीचड़ में पड़ा है, तो आप उसे फेंकेंगे नहीं, कह रहे रे कीचड़ में है बेकार हो गए, नहीं, कहीं भी पड़ा हो उसको निकाल कर साफ करके उसका मूल्य उतना ही है। इसी तरह अगर अच्छे उपदेश हमें कहीं से भी मिले तो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और ये देखिए कि धृतराष्ट्र अब जब पांडवों को संपत्ति वापस कर रहे हैं, उपदेश करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सीखने लायक बात है कि ऐसा व्यक्ति अगर उपदेश कर सकता है, पालन क्यों नहीं करता, है ना? उपदेश करना एक बात है, पालन करना दूसरी बात है। और पालन करते हुए जो व्यक्ति उपदेश करता है वो दूसरों के हृदय को बदलता है। जो व्यक्ति पालन नहीं करता, केवल उपदेश करता है, वो लोगों के हृदय को बदल नहीं सकता, उससे कोई प्रभावित नहीं होगा, सुनने में अच्छा लगता। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं शास्त्रों पर, भागवत पर, लेकिन उनके जाने वाले लोगों का कोई हृदय नहीं बदलता, बाहर निकलकर वही चीज है। दूसरी ओर प्रभुपाद जी, एक प्रवचन, जितने लोग आए सबका हृदय बदल गया, जिन्होंने देखा उनका हृदय बदल गया। क्यों? क्योंकि वो पालन करते थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते जन्म हई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है, पुण्य भूमि में हुआ है, इसलिए पहले जन्म सार्थक कीजिए, फिर परोपकार। परोपकार बाद की बात है, प्रचार बाद की बात है, पहले आचार आचरण चाहिए, फिर प्रचार। और जब कोई पालन करने वाला व्यक्ति प्रचार करता है, लोगों का हृदय बदलता है, लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति प्रचार करता है तो केवल द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि वो उसके हृदय में द्वेष है। तो देखिए अभी हम आपको बताएंगे उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश दिए, सुनकर ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा महात्मा कोई है ही नहीं, लेकिन पालन नहीं। क्यों? आसक्ति, छोड़ नहीं पाया आसक्ति को। तो धृतराष्ट्र ने कह दिया युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। कितनी बड़ी बात कह रहा है, क्या भूलने को लिए कह रहा है धृतराष्ट्र ने? क्या कहा युधिष्ठिर से, क्या भूल जाओ? तुम्हारी पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, भूल जाओ। तुम सबके कपड़े उतरवाए, भूल जाओ। तुम सबको बहुत बुरा भला कहा, भूल जाओ। तो धृतराष्ट्र कहते हैं युधिष्ठिर से कि साधु पुरुष कौन है, श्रेष्ठ पुरुष कौन है? तो बहुत सारे गुणों को देते हैं। वो कहते हैं पहला गुण कि वो कभी बैर नहीं रखता, शत्रुता नहीं रखता, बदले की भावना को नहीं रखता, जो कुछ भी हुआ भूल जाता है। ठीक है, जो हुआ भूल जाता, वो केवल गुण देखता है, दोष नहीं देखता। ये धृतराष्ट्र समझा रहे हैं किसको? युधिष्ठिर को। अधर्मी व्यक्ति धर्मराज को धर्म सिखला रहा है कि युधिष्ठिर भूल जा, कटु वचन भी नहीं बोलना, इतना ही नहीं तो भूल जाओ और ऊपर से कुछ गलत भी मत कहो। धृतराष्ट्र कहते हैं कि तीन प्रकार के लोग होते हैं युधिष्ठिर। सबसे निचला व्यक्ति वो होता है जो बात करते करते कटु वचन बोलता है। देखिए ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत दे रहे बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति देने वाला गलत है लेकिन सिद्धांत सही। तो सबसे निचली श्रेणी का, तीसरी श्रेणी का व्यक्ति होता है जो कटु वचन बोलता है, बातचीत करते करते कटु वचन बोलता है। फिर उससे ऊपर की श्रेणी का व्यक्ति होता है जो जब सामने वाला कटु वचन बोलता है उसके बोलने के बाद कटु वचन बोलता है। आप लोग कटु वचन समझते हैं ना, मतलब कड़वे बातें, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर बोलना बातें, देख लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं इत्यादि, तुम्हारा सर्वनाश हो, ये सब कटु वचन। तो पहले जो सबसे निचली श्रेणी का व्यक्ति है वो कभी भी बोलते हुए बोल देता है। दूसरा श्रेणी का उससे ऊपर का व्यक्ति है कि जब उसे उकसाया जाता है, जब सामने वाला ऐसा बोलता है तब वो बोलता है ना। ऐसा होता है ना, दो लोग आराम से बात कर रहे, धीरे धीरे गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद आवाज बढ़ जाती है, तो शब्द ऐसे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, अरे देख लूंगा, कभी कभी लोग बोलते हैं देख लूंगा, सामने खड़े हैं फिर भी बोलते हैं देख लूंगा, अभी भी देख रहे हैं देख लूंगा। तो ये दूसरी श्रेणी का। और फिर धृतराष्ट्र कहते हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो दूसरों के कटु वचन बोलने पर भी शांत रहता, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम ऐसे व्यक्ति बनो। दरअसल ये घबरा गया था धृतराष्ट्र कि कहीं ये लोग कोई शपथ ना ले लें, ये मेरे मूर्ख लड़के हैं, इनको कोई श्राप ना दे दे, अपराध नहीं, इसलिए तुम कटु वचन नहीं बोलना। ये उसका भय प्रकट हो रहा, लेकिन बातें जो कर रहा है वो सही कर रहा कि इस प्रकार से हमें कटु वचन नहीं कहने चाहिए। लोगों के गुणों को देखना चाहिए, दुर्गुण को नहीं। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, धृतराष्ट्र कहता है, वो सदैव दूसरों के भले के लिए कार्य करता, कभी किसी का गलत नहीं चाहता। कितनी सुंदर बात कह रहा है, लेकिन कहने वाला क्या चाह रहा है? युधिष्ठिर को समझा रहा है दूसरे का कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, और अभी अभी थोड़ी देर पहले खुद ही ने सोचा था, आगे भी सोचेगा, आगे भी सोचेगा। तो इसलिए हमारे सामने उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण भागवत में है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप जब उसके भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई, उसकी माँ इत्यादि, उसकी जो हिरण्याक्ष की परिवार था, पत्नियां थी, वो रो रही थी, तो उनको जाकर उपदेश दे रहा है हिरण्यकश्यप। राक्षस असुर क्या उपदेश देता है? ये तो सब विधान है, ये होना है, हम सब आत्मा हैं। हिरण्यकश्यप कह रहा, हम सब आत्मा हैं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, इसलिए शोक नहीं कीजिए। देखिए जो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को समझा रहे, हिरण्यकश्यप ने पहले ही समझा दिया था, लेकिन उस ज्ञान का मूल्य क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो पालन नहीं कर रहा। इसलिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले पालन करें, भक्ति का पालन करें, फिर लोगों को कहें, लोगों का हृदय बदलेगा। तो इस तरह से धृतराष्ट्र ने कई उपदेश दिए, कहा कि आप अपनी सीमा में रहिए, आप गलत कार्य मत कीजिए, आप तो साधु पुरुष हैं, साधु पुरुष को धर्म का पालन करना चाहिए। वो कहने लगे कि देखो तुम्हारे अंदर धर्म है, भीम के अंदर पराक्रम है, तो इन सारी चीजों को, वैसे ये जो चीजें उन्होंने कही, उन्होंने पांचों पांडवों का गुणगान किया, और उन्होंने जो ये पांच गुण बताए पांचों पांडवों के, ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर धर्म है, भीम के अंदर बल है, पराक्रम है, अर्जुन के अंदर धैर्य है, धैर्य उदाहरण करने वाला अर्जुन है, और नकुल के अंदर श्रद्धा है, और सहदेव गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है। इन्हें उनके गुणगान कर रहे थे धृतराष्ट्र की, आप सब इतने महान व्यक्ति हैं, ये सब क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। लेकिन बहुत अच्छी चीज, जब हमें भक्ति करनी चाहिए तो हमें भक्ति धैर्य के साथ, निर्भय होकर, श्रद्धा के साथ, और गुरु के शब्दों में विश्वास के साथ। भक्ति में प्रगति का एक सबसे सरल उपाय है गुरु के शब्दों में श्रद्धा, बस। अगर हमारे अंदर वो है, बाकी सब आएगा, सारे गुण आएंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। शास्त्र में कहा गया है कि जैसे यस्य देवे, जैसे हम देव अर्थात भगवान की पूजा करते हैं, यस्य देवे परा भक्ति, जैसी भक्ति हम भगवान की करते हैं, यथा देवे तथा गुरु, वैसी ही अगर हम भक्ति गुरु की करें। देखिए बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथितम हि अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। ऐसे व्यक्ति के हृदय में सारे शास्त्रों का सार स्वयं प्रकाशित हो जाता, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल उसको गुरु में श्रद्धा, गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथितम हि अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। वो महात्मा है। महात्मा किसको कहते हैं? केवल ठप्पा लगा देने से कोई महात्मा नहीं बनता, चार लोग किसी को महात्मा कहने से कोई महात्मा नहीं बनता, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रितः। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, महात्मा वो व्यक्ति है जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया। दैवी प्रकृति मतलब ये जो भौतिक प्रकृति है ये निम्न प्रकृति है, इसके परे आध्यात्मिक प्रकृति का जिसने आश्रय लिया है वो महात्मा है। और आध्यात्मिक प्रकृति का आश्रय कैसे लिया जाता है? गुरु के द्वारा। जिसने गुरु को समर्पण किया, जिसने ये मान लिया कि जो ये व्यक्ति कहेंगे बस मैं वही करूंगा। कृष्ण देखते हैं जीवन सफल कैसे होता है, कृष्ण देखते हैं, और कृष्ण देखते हैं कि इसने मेरे भक्त की शरण ले ली और जो मेरे भक्त ने कहा ये वो कर रहा है, मैं कृतज्ञ हूं कृष्ण सोचते हैं। कृष्ण उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं जो उनके भक्त की शरण लेता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, आदि पुराण में श्लोक है कि कृष्ण कहते हैं कि जो कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो ये कहता है कि मेरे भक्त का भक्त है वो सच्चा भक्त है। तो वहां कृष्ण क्या समझा रहे हैं? कृष्ण समझा रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होता हूं जो मेरे भक्त को समर्पण कर देता है, जो गुरु को समर्पण कर देता है। और समर्पण मतलब क्या है? जो वो कहे उसको पालन करना। समर्पण ये नहीं है नाम के लिए, फैशन के लिए, दिखावे के लिए कि हम सामने सबके प्रणाम करें गुरु जी, लेकिन जब गुरु कुछ कहें उसको पालन नहीं करें, ये समर्पण नहीं है, ये तो दिखावा है। इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए जो सच्चे भाव में कृष्ण के भक्तों को, कृष्ण के समर्पित व्यक्तियों को समर्पण करता है, कृष्ण कृतज्ञ हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के प्रति कृष्ण कृतज्ञ हो जाएं, उसके लिए भगवान को प्राप्त करना, इस जगत से पार जाना, मुक्ति प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। जिस व्यक्ति के प्रति कृष्ण स्वयं कृतज्ञ है, जैसे एक बार की कथा है कि एक राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो लोग आए, किसी ने कुछ धन मांगा, किसी ने कुछ ऐश्वर्य मांगा, भूमि मांगी इत्यादि, राजा ने दे दिया। लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे आपसे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपकी मित्रता चाहिए, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं। राजा ने कहा बस ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मित्रता चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, आज से तुम मेरे मित्र हुए, ठीक है। और फिर राजा ने सोचा कि अरे ये मेरा मित्र है, मैं महल में रहूं और ये झोपड़ी में रहे, हो नहीं सकता। अपने ही जैसा और एक महल बनवाया उसके लिए, बोला तुम मेरे मित्र हो, जैसे मैं रहूंगा वैसे तुम रहोगे, सारा ऐश्वर्य भी दिया, धन भी दिया। तो देखिए उस व्यक्ति ने धन की कामना नहीं की, महल की कामना नहीं की, भूमि की कामना नहीं की, राज्य की कामना नहीं की, केवल मित्रता से सब कुछ प्राप्त हो गया। इसी तरह हमें अगर भगवान के पास आकर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल समर्पण, उनके दास बने, उनके भक्तों के दास बने, सब कुछ आएगा, क्योंकि कृष्ण कृतज्ञ होंगे। जैसे उस राजा ने सोचा कि ये मेरा मित्र है, वो कैसे झोपड़ी में रह सकता है, मैं सोने की थाली में खाऊं और उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं, कैसी मित्रता, सब कुछ प्रदान किया। इसी तरह कृष्ण सोचते हैं कि मैं कृतज्ञ हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं इसके लिए, तो क्या करूं, क्या दूं इसको, क्या कोई थोड़ा बहुत ऐश्वर्य, नहीं ये सब नहीं, तो फिर कुछ और मुक्त तो कर ही देता हूं इसको। भगवान मुक्त कर देते हैं। जैसे एक और प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को एक फूल अर्पण किया मृत्यु के समय, वो भी अनजाने में। दरअसल वो फूल लेकर जा रहा था अपनी प्रेमिका को देने के लिए, नदी के किनारे चल रहा था, पांव फिसल गया, नदी में डूब गया, डूबते डूबते अचानक उसने वो फूल भगवान को समर्पण कर दिया, क्योंकि अब प्रेमिका तो मिलेगी नहीं, वो पता नहीं, भगवान तो कम से कम दिख जाए, तो उसने समर्पण कर दिया, कृष्णमर्पणस्तु, और मर गया। तो अब पहुंचा यमराज के पास, वैसे बड़ा पापी था, तो चित्रगुप्त ने खोला उनका अकाउंट, बोला ये तो बहुत पापी आदमी है, तो यमराज ने कहा कुछ अच्छा काम किया? चित्रकूट ने एक ही अच्छा काम किया, मरने के समय एक फूल भगवान को अर्पण किया, कृष्णम अर्पणस्तु। तो यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से कि अच्छा बताओ तो इसका क्या फल है? चित्रगुप्त के पास सब कुछ लिखा है, अगर आप ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो बताओ क्या फल है? चित्रगुप्त ने कहा ये मेरे जो अधिकार है इसके परे है, मैं जहां तक कर सकता हूं इस जगत का जो पाप और पुण्य, लेकिन जहां भगवान को अर्पण किया, एक फूल भगवान को अर्पण किया, इसका क्या लाभ है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको पता होना चाहिए, आप धर्मराज हैं। तो यमराज ने सोचा कि भगवान को फूल अर्पण करने का मुझे भी नहीं पता फल क्या होगा, क्या बता सकते? क्या ये कह सकते कि कुछ धन मिलेगा? नहीं। कुछ ऐश्वर्य मिलेगा? नहीं। धन संपत्ति? नहीं। मुझे भी नहीं पता, चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो उस व्यक्ति को लेके ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि उसको नरक में कैसे छोड़े पता नहीं क्या लाभ है, तो लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई ऐसा हुआ है कि इसने एक फूल अर्पण कर दिया भगवान को मरने के समय, अब उसका क्या लाभ है? बाकी तो हम इसे दंड देंगे, लेकिन उसका लाभ क्या है वो बताइए। तो ब्रह्मा जी भी अपने चारों सर खुजाने लगे कि ब्रह्मा जी के चार सर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, कौन बता सकता है कि भगवान की भक्ति का लाभ क्या है? जैसे कुछ समय पहले हम कहीं पर गए थे तो किसी को प्रसाद हम लोगों ने दिया था कहीं मंदिर से, तो उन भक्तों ने पूछ लिया कि प्रभु जी आपने प्रसाद दिया, हम लोग इसका क्या दें, इसका लक्ष्मी क्या दें? तो हमने उनसे एक ही बात कही कि आपको अगर लगता है कुछ कि इस प्रसाद की इतनी लक्ष्मी होती है तो आप दे दीजिए। अब वो कैसे देंगे? प्रसाद का क्या मूल्य है, कोई लगा सकता है मूल्य? कोई कह सकता है कि प्रसाद का इतना मूल्य होगा? नहीं। तो ऐसे ब्रह्मा जी भी अपने चारों सर खुजाने लगे कि ये तो कहां से आ गया प्रश्न। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक फूल अर्पण करने का क्या लाभ है। तो उन्होंने कहा चलो इसको लेके शिव जी के पास चलते हैं, शिव जी को जरूर पता होगा, वैष्णव है। तो सारे उसको लेकर अब ब्रह्मा जी यमराज ये सब लेकर पहुंचे शिव जी के पास। अब शिव जी को पूछा कि बताइए एक फूल अर्पण करने का क्या लाभ दें इसको, क्या लाभ है? शिव जी ने कहा मुझे भी नहीं पता, ये तो आप ऐसी बात पूछ रहे हो, मैं क्या बता सकता हूँ भगवान की भक्ति उसका क्या लाभ हो सकता है? तो लेकिन कुछ तो देना है इसको, क्या करे, इसने अर्पण कर दिया फूल, क्या करे, इसको स्वर्ग भेजे नरक भेजे क्या करे? शिव जी ने कहा मुझे नहीं मालूम, चलो विष्णु के पास चलते इसको लेकर। तो सब उसको लेकर वैकुंठ चले गए विष्णु के पास, भगवान के पास। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि ये जो व्यक्ति था मरने के समय इसने केवल एक फूल आपको अर्पण कर दिया, कृष्णम अर्पणस्तु कर दिया, तो अब इसको क्या लाभ देना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताइए क्या लाभ होगा? तो भगवान ने कहा कि अरे आप लोगों को बुद्धि नहीं है, एक लाभ तो सामने ही है कि जिस व्यक्ति ने केवल एक फूल अर्पण कर दिया भगवान को मृत्यु के समय, उसे ब्रह्मा जी और शिव जी स्वयं वैकुंठ में लेकर आए हैं, है कि नहीं? उससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, आप लोग जाइए वापस। तो देखिए एक फूल भगवान को अर्पण करने का ये लाभ है। हमारे मंदिर में तो रोज इतने सारे फूल माता जी लोग बना बना कर अर्पण कर रहे हैं, क्या लाभ होगा बताइए उनको, कोई बोल नहीं सकता। भगवान की सेवा का कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है ये, इसका कोई मूल्य नहीं, ये दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन ये सही बात है, देवता भी नहीं जानते हैं कि इसका क्या मूल्य है भगवान की सेवा का। तो इसलिए ये ऐसी सेवा हमारी होनी चाहिए। तो जो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर इत्यादि को बतलाया कि युधिष्ठिर को बताया कि ये गुण आप सब में हैं, तो दरअसल ये भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो इस दृष्टि से हमें धर्म पर चलना चाहिए। पांच चीजों को उन्होंने कहा पांचों पांडवों के लिए, धर्म, धैर्य, पराक्रम, श्रद्धा और गुरु सेवा या गुरु की गुरु में समर्पण। तो भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम गुरु के आदेशों का पालन करें, धैर्य बनाए रखें, ये नहीं सोचे कि मुझे मंदिर आते हुए 10 साल हो गए कोई बदलाव नहीं आया, मेरा घर छोटा था अभी तक छोटा है, बंगला नहीं बना, हाँ, या फिर मेरे 2 ही हाथ हैं अभी तक 4 हाथ नहीं हुए। धैर्य, एक दिन भगवान कृपा करेंगे, ये धैर्य चाहिए हमें। जिस दिन धैर्य खो दिया भगवान फिर कृपा चली जाती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति, उसने सोचा कि आज से मैं पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहूंगा, तो ऐसे ही घूमने लगा, कपड़े वपड़े फट गए, बिना कपड़े के घूम रहा है, बस भगवान पर आश्रित हूँ, भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो जब ऐसे घूमने लगा गंदा सा, तो सब बच्चे पत्थर मारने लग गए उसको, स्वाभाविक है ऐसे किसी व्यक्ति को देखें। उसने कहा कुछ भगवान बचाएंगे, पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पण। तो और लोग पत्थर मारने लग गए, तो उसने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो पत्थर उत्थर मार रहे, पहले तो केवल कुछ गलत शब्द कह रहे थे, अब तो पत्थर मार रहे हैं। तो उसने कहा ये लोग जाएंगे नहीं, वो घूमा और पत्थर उठाया और उन लोगों को मारने लगा। तो जैसे ही पत्थर उठाकर उसने मारने को लिए देखा, तो देखा कि भगवान भी वहां खड़े थे और वो घूम कर वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने बोले अरे अरे आप इधर आइए, आप कहाँ जा रहे हो? तो भगवान से उन्होंने कहा कि अरे मैंने आपको पूर्ण समर्पण किया सब आपके लिए, फिर लोग पत्थर मार रहे हैं, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा मैं आ ही रहा था बचाने के लिए कि मैंने देखा तुम्हें अपने ऊपर विश्वास हो गया तुमने पत्थर उठाकर उनको मारना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा जब तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो मेरी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। तो देखिए धैर्य होना चाहिए, ये नहीं कि हम 10 साल 5 साल 10 साल भक्ति कर रहे हैं अभी तक वो कृष्ण प्रेम नहीं आया, आंखों में आंसू नहीं आए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना भागवत में चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण का नाम व्यक्ति मोर पंख देखकर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ऐसे भक्तों का वर्णन है चैतन्य लीला में। एक वैद्य थे, तो वो जस एक राजा के पास गए, राजा को मोर पंख से झालन किया जा रहा था, मोर पंख से हवा दी जा रही थी, तो वो मोर पंख देखकर वो मूर्छित हो गए। राजा को ट्रीटमेंट देने गए थे, वैद्य थे, लेकिन खुद बेहोश हो गए। किस लिए? मोर पंख देखते ही कृष्ण का स्मरण हुआ, मूर्छित हो। हम लोग तो 15 साल हो गए, 20 साल 30 साल जपा कर रहे हैं, रोज मोर पंख देखते, मोर पंख क्या साक्षात कृष्ण को देखते मूर्छित नहीं होते? आशा आप में से कोई नहीं होते, पता नहीं हुए भी होंगे, लेकिन ना आंखों से आंसू आते हैं, ना केवल कृष्ण कृष्ण का स्मरण हम लोग सुनते हैं। कितने महान भक्तों का वर्णन सुनते हैं कि कृष्ण का नाम लेकर ये कर लिया, अब किसी ने जहर पी लिया, कुछ नहीं हुआ। अब ऑफकोर्स वो आप लोग प्रयास मत कीजिएगा, हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आते रहें। और जो हम लोग भक्ति का विषय सुनते हैं कि कृष्ण का नाम सुनते ही हृदय में एकदम आनंद आ जाता है, दिव्य आनंद, कुछ नहीं है। कृष्ण का नाम सुनते हैं कल ऑफिस में जाके क्या करना है वही याद आता है। धैर्य, हमें धैर्य रखना, आए कृष्ण की कृपा आएगी, अगर धैर्य खो बैठे तो फिर नहीं आएगी। तो इसीलिए गुरु को समर्पण आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है कि यह जो मैं काम कर रहा हूं वही सही है, कोई और मार्ग की आवश्यकता नहीं है। 10 लोग आकर हमें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, कोई कहते प्रभु, एक बार हमें एक व्यक्ति ने कहा था, हम ट्रेन में जा रहे थे, एक वृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति, वो कई बार इधर से उधर गए और फिर थोड़ी देर बाद आकर हमारे पास बैठ गए। वो किसी संस्था से थे जहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है और अंत में भगवान में लीन हो जाना है, आत्मा समाप्त। और वो जानते थे कि हम इस्कॉन से हैं और इस्कॉन वाले ऐसा नहीं मानते, वो भगवान को मानते हैं, ये सब नहीं मानते, बेकार की बातें हैं। तो आए हमारे पास बैठे, फिर हमसे कहने लगे कि पूछा कि कैसे कहाँ से हैं वगैरह, क्योंकि कुछ बताइए आप, कुछ आध्यात्मिक विषय बताइए। तो हमें समझ गए क्योंकि इतना जल्दी व्यक्ति को इतनी रुचि नहीं होती है कि वो केवल आध्यात्मिक विषय सुनना चाहता है, तो फिर भी क्योंकि किसी ने कहा तो हमारा कर्तव्य है, हमने बताया उन्हें कृष्ण का विषय, तो फिर उन्होंने भी बताया इत्यादि इत्यादि, ये ज़्यादा लंबा नहीं। तो अंत में उन्होंने हमसे कहा उन्होंने कहा आप इतने बुद्धिमान हैं, आपको इतना ज्ञान है, अगर आप सही जगह पर होते ना तो आज कहां से कहां पहुंच गए होते। मतलब उनका कहने का अर्थ यह था कि आपके अंदर बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन गलत जगह पर हो, ये जो संस्था में हो गलत जगह पे हो, हमारे पास आओ, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो हमने उनसे कहा कि हाँ ये सही है, अगर हम इस संस्था में नहीं होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते। मतलब कहने का हमारा आश्रय ये था कि अभी तो जहां है वह ठीक है, नहीं तो कहां से कहां पहुंच गए होते, एकदम अधोगति हो गई होती, कोई भगवान का स्मरण नहीं होता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित करना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं कि आपका मार्ग गलत है, आप जो कर रहे हो वो गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमें कृष्ण में श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा चाहिए। तो गुरु में विश्वास, गुरु के शब्दों में विश्वास, गुरु को समर्पण, कृष्ण में श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, और फिर धैर्य। जैसे चैतन्य लीला में एक बहुत सुंदर लीला है कि जब चैतन्य महाप्रभु एक बार लीला कर रहे थे, एक भक्त को उन्होंने नहीं बुलाया, तो बाकी सारे भक्तों ने आकर कहा कि प्रभु जी महाप्रभु वो बाहर खड़े हैं, आप उनको अंदर आने दीजिए, आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ये एक ढोंगी है, हम लोग के साथ जब आता है तो भक्ति की बात करता है, फिर वो मायावादियों के साथ जाकर वह मायावादियों की बात करता है, बोलते हैं हाँ आप जो बोल रहे हो सही है, हमारे साथ आकर बोलते हैं हम जो बोल रहे हैं सही, ऐसे ढोंगी व्यक्ति को मैं दर्शन दे दूंगा। तो सब भक्तों ने जाकर इसको बताया कि महाप्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आपको ऐसे दर्शन नहीं देंगे क्योंकि आप ढोंगी हो। बहुत दुख हुआ, रोने लगा, उसने कहा बस एक चीज उनसे पूछो कि मुझे कब दर्शन देंगे। तो फिर से भक्त गए, उन्होंने पूछा कि पूछ रहा है कब दर्शन दें, उन्होंने कहा जाओ उसको बोलो मैं 10 लाख जन्म में भी दर्शन नहीं दूंगा, उसको 10 लाख जन्म के बाद दर्शन दूंगा, 10 लाख जन्मों तक दर्शन नहीं दूंगा। तो उन्होंने जाकर बताया, सब बड़े दुखी हुए ये सुनकर कि अरे अरे 10 लाख जन्म तक दर्शन नहीं होगा। तो जाकर उसको बताया कि अरे बहुत दुख की बात है, क्या हुआ क्या कहा महाप्रभु, उन्होंने कहा कि आपको 10 लाख जन्म तक दर्शन नहीं देंगे। तो जैसे ही उसने सुना वो कूद पड़ा, उछल पड़ा, बहुत खुश हो गया, जोर जोर से हरि बोल कहने लगा। तो भक्तों ने बोला लगता पागल हो गए सदमे से, महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे इसी में। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो दुख की बात है, आप इतना खुश क्यों हो रहे हो। उन्होंने कहा 10 लाख साल बाद तो देंगे ना, महाप्रभु ने कहा कि 10 लाख साल नहीं, 10 लाख जन्म नहीं देंगे, उसके बाद तो देंगे ना, बस इसलिए मैं खुश हूं। ये धैर्य है। और जब भक्तों ने जाके महाप्रभु को बताया कि वो तो उछल रहा है, खुश हो गया कि 10 लाख साल जन्म के बाद आप देंगे, महाप्रभु ने कहा ले आओ उसके अंदर लिया। अभी दे देता हूं। ये धैर्य है, कैसे हमें विश्वास, धैर्य होना चाहिए। हाँ होगा 10 लाख जन्म, कोई बात नहीं, इसके बाद मिलेंगे कृष्ण, बहुत खुश। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी के बताए हुए फॉर्मूले पर चलते हैं तो 10 लाख जन्म की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने कहा अगर आप इसी जन्म में कृष्ण की प्राप्ति चाहते हो, भगवान के धाम जाना चाहते हो, तो बड़ा सरल उपाय, 16 माला जप ध्यान से और 4 नियमों का पालन। प्रभुपाद कहते हैं निश्चित है कि आप भगवान के धाम जाओगे इसी जन्म में। और क्या हमें इस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, अरे इतने बड़े बड़े महात्मा लोग हजारों हजारों जन्मों तक तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर भी कृष्ण नहीं मिलते, और यहां केवल 16 माला जप और 4 नियम का पालन भगवान प्राप्ति, माने इस बात को या नहीं माने। अगर ये बात गलत भी है, मान लीजिए भगवान बाध्य हो जाएंगे क्योंकि प्रभुपाद ने कहा, उनके शुद्ध भक्त ने कहा है, तो भगवान को पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा जी कुछ भी कह देते भगवान को पूरा करना पड़ता है ना, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, हिरण्यकशिपु ने कहा ऊपर नहीं मरू, नीचे नहीं मरू, जमीन पे नहीं, आकाश में नहीं, थल में नहीं, जल में नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, अस्त्र शस्त्र से नहीं, मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं, तथा अस्तु। अब ब्रह्मा जी के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान को नरसिंह रूप लेना, इसलिए नहीं लिया। किसने लिया? भगवान ने नरसिंह रूप अपने भक्त के शब्दों को पूरा करने के लिए। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। तो इसी तरह जो प्रभुपाद ने कह दिया उनको पूरा करना ही पड़ेगा, भगवान बाध्य हैं, और इसीलिए हमें यह विश्वास होना चाहिए। इसलिए धैर्य, श्रद्धा, गुरु के शब्दों में विश्वास, पराक्रम, पराक्रम मतलब बल, निर्भयता। निर्भयता मतलब ये नहीं कि लड़ना, युद्ध करना, निर्भयता मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करने की निर्भयता, और फिर धर्म का पालन। तो पांच पांडवों के पांच गुणों को बताकर धृतराष्ट्र हम सबको ये समझा रहे हैं कि अगर हम इन गुणों को स्वीकार करें तो जैसे पांडवों को कृष्ण की प्राप्ति हुई, ऐसे ही हमें भी कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो ऐसे कहकर उनको उन्होंने वापस भेज दिया। अब जब वापस चले गए, सारा कुछ चला गया, दुर्योधन आप सोचिए कितना दुखी हुआ होगा। इतनी बड़ी प्लानिंग की थी उसने, सब कुछ ले लेने की, आ भी गया था और पिताजी ने जाओ सब वापस कर दिए। तो दुर्योधन बड़ा दुखी, दुशासन दुखी, शकुनी तो हाय हाय, पता नहीं क्या, सब चला गया। अब सबकी मीटिंग हुई फिर से, क्या करना चाहिए। बोले चलो वापस जाएंगे धृतराष्ट्र के पास। फिर से गए उसके पास। दुर्योधन ने कहा धृतराष्ट्र कि आपने सब कुछ वापस कर दिया, लेकिन आप जानते हो अर्जुन के बल को जानते हो? अब क्या है अर्जुन में बल? मैं हमेशा भयभीत रहता हूं अर्जुन से, दुर्योधन कहता है। सोते समय स्वप्न में केवल अर्जुन दिखाई देता है मुझे, इतना उसके अंदर बल है। और अलग अलग प्रसंगों को कहने लगे कि अर्जुन अकेला था जिस समय उसने युद्ध किया, कई कई जगहों पर अकेले युद्ध किया। तो उन्होंने वर्णन करना शुरू किया कि जब उलूपि से विवाह हुआ, सुभद्रा से विवाह किया, द्रौपदी के स्वयंवर का वर्णन किया कि उस समय सब थे और सारे राजाओं ने आक्रमण किया अर्जुन के ऊपर, अकेले उसने सबको हरा दिया, जिसमें कर्ण भी था। ये दुर्योधन स्वयं कहते हैं कि कर्ण वगैरह थे द्रौपदी के स्वयंवर में, अर्जुन ने अकेले हरा दिया। और फिर कई खांडव प्रस्थ का वर्णन किया। खांडव वन में तो उन्होंने वर्णन किया दुर्योधन ने कि वहां तो देवताओं के साथ युद्ध हुआ। दुर्योधन कहते हैं कि इंद्र आए थे युद्ध करने, अपने ही पुत्र से उन्होंने युद्ध किया इंद्र ने, सारे देवता आए, अर्जुन ने अकेले इंद्र समेत सारे देवताओं को परास्त किया। तो जिससे देवता युद्ध नहीं कर सकते, हम लोग क्या युद्ध करेंगे? धृतराष्ट्र ने जब यह सुना तो कहा मैं भी यही समझा रहा हूं तुम्हें, दुर्योधन में तब से यही समझा रहा हूं, उसके साथ बड़े प्रेम से रहो, उसके साथ वैर मत करो, वो मार डालेगा अगर शत्रुता करोगे तो। दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा। दुर्योधन ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि युद्ध में उससे नहीं जीत सकते, कम से कम छल से तो जीत जाए उसको। अच्छा भला हम जीत गए थे, आपने वापस कर दिया, फिर से बुलाइए उसको, हम फिर से खेलेंगे। उसने कहा रे ऐसे कैसे हो सकता, अभी अभी मैंने सब वापस किया। बोले नहीं, इस बार हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे, कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, उनकी पत्नी नहीं, कुछ नहीं, दांव पे लगेगा, एक ही दांव लगेगा बस। अगर हम हार गए तो हम सब वल्कल वस्त्र धारण करके वनवास चले जाएंगे 12 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और अगर वे हार गए तो उन्हें जाना है। तो शर्त ये रखी गई कि जो भी हारेगा उसे 12 वर्ष तक वनवास जाना है और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। ये दुशासन के दिमाग की उपज थी। 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, और अगर उस अज्ञातवास में उसकी भी कंडीशंस थी, उसके नियम थे, सबसे पहली चीज हमारे राज्य के पास में ही रहना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए, दूसरी चीज किसी प्रसिद्ध स्थान में रहना चाहिए, तीसरी चीज कोई पहचान नहीं सके आपको, अगर पहचान लिया तो फिर 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। दुशासन ने प्लानिंग ये की थी कि ये लोग जीवन भर वन में ही रहेंगे, 12 वर्ष वन में रहेंगे, 1 वर्ष में हम इनको ढूंढ लेंगे जहां भी रहेंगे, फिर 12 वर्ष, फिर 1 वर्ष, मतलब जीवन भर वन में और हम लोग आराम से यहां रहेंगे। कितनी बढ़िया प्लानिंग थी उसकी। तो इसलिए फिर से बुलाइए। तो धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, सब ने निंदा की, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म क्या कर रहे हो, पागल हो, अभी सब शांत हो गया है। मेरे पुत्र ने कहा, मैं तो बोलूं, गांधारी ने समझाया, महाभारत में वर्णन आता है कि गांधारी भी समझाने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों अग्नि से खेलना चाहते हैं, जो हो गया शांत है, अभी मत कीजिए। और गांधारी ने क्या कहा, गांधारी ने कहा कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था, ब्राह्मणों ने कहा था मार डालो इसको, कुल का नाश करेगा, गधे की तरह रेंग रहा था ये, और उस समय हमने मारा नहीं पुत्र आसक्ति से, लेकिन अब ये वही काम कर रहा है, आप ऐसा मत कीजिए, कुल का नाश मत कराइए। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र से इतना आसक्त थे, पहली बार जब वो वापस कर रहे थे तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि दरअसल ये द्यूत क्रीड़ा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी अनुमति इसलिए दी कि मैं आप सबसे मिलना चाहता था, कि चलो खेलने के बहाने आप सब आएंगे, आपसे मिल लूंगा, अब वापस जाओ। तो जानता था कि अच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र मोह में फिर से द्यूत क्रीड़ा करने के लिए उसने अपने सैनिकों को, अपने दूतों को युधिष्ठिर के पास भेजा। और युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया और उसके बाद क्या हुआ, ये अगले सोमवार को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी कीर्तन करेंगे 5।